मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र के प्रश्न पर बात करेंगे जो अभी अधूरा रह गया है, लेकिन आइए पहले जो दूसरी घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की एक महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं शेन वार्न, उनका निधन हो गया। बहुत ही कम उम्र के थे, 52 ईयर्स के, और इनके बारे में अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जब मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहता हूं तो इसका मतलब आईएएस एग्जामिनेशन से ही है, जो इस नाम से अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। मैं इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम है या जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, हो सकता है कि उनमें यह प्रश्न पूछ लिया जाए। शेन वार्न, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनका निधन हुआ है और साथ ही साथ बहुत ही महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे, बेसिकली वो बॉलर रहे हैं। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे थोड़ी सी जो बात महत्वपूर्ण लगती है वह है उनकी ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने एक राइटर के साथ मिलकर के अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है नो स्पिन। स्पिन वही जब बॉल फेंकते हैं तो है ना, स्पिन तरह की बॉल फेंकी जाती है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन, आप इसे याद रख सकते हैं और मुझे लगता है कि याद रखना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, कार्बन क्रेडिट का बाजार, इस शीर्षक से, और मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। मुझे इस बात की खुशी है कि अब जो अखबार के एडिटोरियल्स या जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर मैंने जो थोड़ी सी बातचीत करनी शुरू की है उस पर आप सबकी राय जाननी चाहिए थी, और आप सबने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, इससे आप सबको बहुत लाभ होता है, एक दृष्टि मिलती है। और डेफिनेटली अगर आपको दृष्टि मिल जाती है तो आप ये मान करके चलिए कि आपके पढ़ने की जो दिशा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, सही हो गई है, और अब आप सही बातों को ही पकड़ करके अपने दिमाग में रखेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से जरूरी होंगे। तो मैं अब इस पर भी आप सबसे बात किया करूंगा। कार्बन क्रेडिट को लेकर के वो एडिटोरियल कमेंट है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार साल हुए होंगे मेंस में कार्बन क्रेडिट के बाजार को लेकर के सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन क्रेडिट अपने आप में टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए। ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत इस पर बकायदे लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, सीधे सीधे कार्बन क्रेडिट पर भी है और एक है कार्बन समन की रणनीतियां, उस पर भी है। क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट है वो बेसिकली इसी तरह का एक प्रयास है कि किस प्रकार से खासकर जो CO2 जो हो रहा है, लगातार उसकी मात्रा जो बढ़ती चली जा रही है, उसे कम किया जाए। तो अब आप देखिए कि थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बैकग्राउंड के रूप में दूं कि ये कार्बन क्रेडिट है क्या। कार्बन आप जानते हैं, यहां आप गैस से इसको इसे लगा लीजिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। जब आप पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तब ये निकलती, यहां तक कि खेती बाड़ी करते हैं तब ये गैस निकलती है, और यह एक इस तरह की गैस है जिससे हमारे वातावरण में गर्मी में इजाफा होता है, वार्मिंग बढ़ती है। मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया कार्बन, ठीक है। अब है क्रेडिट। ये क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, आप इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है, चलिए मैं इसी के जरिए समझाता हूं, या आपके पास एक उद्योग है, 5 एकड़ आपके पास जमीन है, और 5 एकड़ जमीन में आपको ये कहा गया है, इसे आप उद्योग पर भी लागू कर सकते हैं, कि आप 1000 यूनिट कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं। आप जमीन की जुताई करते हैं, फसल बोते हैं, यह है, तो 5 एकड़ में 1000 कार्बन यूनिट इकाई, यानी कि प्रति एकड़ कितना हो गया, 200 यूनिट, ठीक है, 1000 तक आप कर सकते हैं। किसी वजह से आपने 5 एकड़ पर खेती नहीं की, आपने 4 एकड़ पर ही खेती की, और आपका कार्बन कितना उत्सर्जित हुआ, 4 एकड़ पर 800 यूनिट। तो अब ये जो 200 यूनिट जो आपका अधिकार था कि आप इतने कार्बन का और उत्पादन कर सकते हैं, और सरल शब्दों में कह लीजिए कि आप ये कार्बन पैदा कर सकते थे लेकिन आपने पैदा नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने 200 यूनिट बचा लिया, प्रकृति को पर्यावरण प्रदूषण से बचा लिया 200 यूनिट। अब आपको ये जो 200 यूनिट है इसका एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जैसे शेयर के प्रमाण पत्र मिलते हैं ना, या किसी भी चीज का एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि भाई इनके पास 200 यूनिट कार्बन क्रेडिट मौजूद है। अब आपके पास 200 यूनिट बच गया। अब सवाल यह है कि इसको खरीदेगा कौन? एक दूसरा किसान है, वह भी 5 एकड़ बुआई करता है, लेकिन वह कार्बन अधिक उत्सर्जित करता है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से वो खेती नहीं कर रहा है, तो वह मान लीजिए कि 1200 यूनिट कार्बन पैदा करता है, लेकिन अधिकार उसका भी कितना है? 1000 यूनिट का, तो वह 200 यूनिट ज्यादा पैदा कर रहा है। तो अब इस 200 यूनिट की वो भरपाई कैसे करेगा? तो यह जो दूसरा किसान है, आपसे, आपके पास जो 200 यूनिट क्रेडिट है कार्बन की, वो खरीद लेगा और इस तरीके से उसकी भरपाई हो जाएगी। अब सवाल यह है कि किस रेट पर खरीदेगा? तो कुछ नहीं, कार्बन की इसी ट्रेडिंग को आप यूं कह लीजिए कार्बन का व्यापार कहते हैं, बस और कुछ नहीं। और बकायदे इसके लिए, जैसे शेयर मार्केट के लिए शेयर बाजार बने हुए हैं, कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी बाजार बने हुए हैं। ये भारत में भी है और दुनिया के दूसरे देशों में भी है। बकायदे शेयर बाजार की तरह ही कार्बन ट्रेडिंग का काम होता है। इससे देखिए, सीधी सी बात है कि सबके निर्धारित हैं, चाहे उसके जंगल हैं या उद्योग हैं, कि आप इतना कार्बन उत्पादित कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा उत्पादित करेंगे तो इसकी भरपाई के लिए आपको दूसरे किसी से कार्बन खरीदना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। तो ये माना जाता है कि इससे हो सकता है कि जो कार्बन उत्सर्जित की जो मात्रा होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह है कार्बन क्रेडिट। इस टॉपिक पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आता हूं प्रश्न पर, एक प्रश्न पर जो हम लोग पिछली बार जिस पर चर्चा कर रहे थे लेकिन बात अधूरी रह गई है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? सबसे पहले तो मित्रों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट ने इस पर अपने अपने आंसर लिख करके भेजे हैं, उसमें से ज्यादातर आंसर सही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो विश्लेषण किया गया है कि ये क्यों सही है, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, उस पर भी आप लोगों ने तार्किक रूप से विचार किया है और यही होना चाहिए। देखिए, मैं बता देता हूं, आप अपने मन मन में सोच करके आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही अभ्यास नहीं होगा। भले आप मुझे न भेजें, लेकिन आपको अपने लेवल पर बाकायदे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर पहला विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प है कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, अगर यह विकल्प नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या कर की दरों में कटौती करने से आर्थिक मंदी दूर नहीं होगी? तो आपको लगेगा कि यार, कर में अगर कटौती कर दी गई, इसका मतलब है कि वस्तुएं थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी। जब वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तब फिर तो लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे ना। तो आर्थिक मंदी का क्या मतलब है? मंदी का मतलब है कि बाजार में गतिविधियां कम हो गई हैं, वस्तुएं तो हैं, काफी कुछ वस्तुएं हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है। यही ना हुआ ना आर्थिक मंदी, सामान्य तौर पर यही आर्थिक मंदी है। लेकिन जब कर में कटौती कर देंगे तब तो वस्तुएं थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी, जब वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो लोग तो खरीदने लगेंगे, तो मार्केट में मंदी दूर होने लगेगी, एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, लेकिन के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। लेकिन आपने ब्याज की दर बढ़ा दी, जब आपने ब्याज की दर बढ़ा दी तो अब क्या है कि आप बैंक से अब आप लोन नहीं लेंगे, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ चुकी है और आपके पास जो पैसा खुद का भी बचा हुआ है ना, तो आप क्या सोचेंगे यार कि इसको खर्चा क्यों करें, अब ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो इसको भी बैंक में जमा कर दें। इसका मतलब है कि जो पैसा है उपभोक्ता के पास वो मार्केट में नहीं आएगा, जब मार्केट में नहीं आएगा तो आर्थिक मंदी बनी रहेगी, या कह लीजिए कि जो वस्तुएं हैं वो बिना बिकी पड़ी रहेंगी, तो पहला नहीं होगा। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। सार्वजनिक परियोजनाएं, देखिए पब्लिक सेक्टर्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं, और कहा ही यही जाता है। और देखिए प्रश्न कहां से लिया गया है, पूरे के पूरे कोरोना काल में काफी कुछ देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया कि बहुत मंदी के दौर से गुजर रहे, क्या किया जाए? क्योंकि सरकार अपना खर्च बढ़ाए, सरकार अपना खर्च बढ़ाए, खर्च बढ़ाएगा का मतलब ये नहीं कि ऑफिस एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, वो इस तरह के काम करे कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू कर दे, सड़कें बनवाना शुरू कर दे, बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दे, तो उससे निर्माण भी होगा यानी कैपिटल बनेगा, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और साथ ही साथ जब सरकार खर्च करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो सीधी सी बात है कि लोग वस्तुएं खरीदना शुरू करेंगे, मार्केट में एक्टिविटीज होगी, आर्थिक मंदी दूर हो जाएगी, ये हो सकता है। इसके बाद तीसरा है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। एक का बिल्कुल उल्टा है, जब आप कर की दरों में वृद्धि कर देंगे तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, एक तो लोग आर्थिक मंदी में वैसे ही नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे तभी तो आर्थिक मंदी आई है ना, और क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आर्थिक मंदी का क्या कारण है वो एक अलग बात है। और फिर आप ब्याज दर में कमी कर देंगे तो उससे क्या होगा, ब्याज दर में कमी कर देंगे, लोग जाकर के बैंक से पैसा ले आएंगे कि भैया चलो ब्याज दर में कमी हो गई है तो खरीद ले, लेकिन वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ गई हैं तो ब्याज दर तो बेकार हो गया है, ये बराबर हो गया ना। ब्याज दर में आपने वृद्धि कर दी और कर में कमी कर दी, तो वस्तुओं की कीमत तो कम हो गई लेकिन हम जो अब खर्च कर रहे हैं उस पर हमें ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर हमने बैंक से ऋण लिया है तो इसका भी कोई असर नहीं होगा। इसका है डी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा कि सार्वजनिक परियोजनाओं में जो आप खर्च कर रहे हैं आप उस पर खर्च करना बंद कर देंगे, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, जब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा कहां से, और फिर मंदी कैसे दूर होगी। तो जब आप इस तरह से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में यह प्रश्न कितना सरल है, और उससे भी बड़ी बात है कि कितना व्यावहारिक है, बशर्ते कि आप इसमें से व्यावहारिक बातें समझ करके निकाल सकें। फिर आप देखिए कि अर्थशास्त्र के प्रश्नों में आपको कितना मजा आने लगेगा। डेफिनेटली मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि आपको मजा आने लगेगा, आपको यह विषय कठिन नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं, इसके लिए नंद कुमार ने एडमिशन कराया है जो बेलाव बिहार से हैं। नंद कुमार जी आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सूरज चौहान नागपुर से, सीतांजलि बिस्वाल और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।